आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, आई एम देवांगना द्विवेदी और आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 22 से सेकेंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री के। हमने लास्ट क्लास में ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और आज हमको पेज नंबर 22 से स्टार्ट करना है। सो लेट स्टार्ट। चोल राज्य नजदीक से एक नजर, मतलब इस पूरे सेशन में, आज की पूरी क्लास में हम चोल राज्य के बारे में जानेंगे कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, कौन सी चीजें कैसे होती थी वहां पर, उसके बारे में। यहाँ देखिए, आपको एक पूरा पिक्चर दिया हुआ है, मैप दिया हुआ है, जिसमें ये चोल राज्य का जो इलाका है वो पूरा दिया हुआ है। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए साइड में दिया है, मानचित्र 2, चोल राज्य और उनके पड़ोसी। तो मतलब ये चोल राज्य है और ये उसके पड़ोसी है। चलिए शुरू करते हैं। उरईयूर से तंजावूर तक, मतलब उरईयूर से तंजावूर तक ये पूरा इलाका चोल राज्य का है। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टिरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांजीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। मतलब चोल वंश कैसे पावरफुल हुआ, कैसे सत्ता में आया, कैसे उन्होंने अपना किंगडम एस्टैब्लिश किया, कावेरी डेल्टा का एक जो मुट्टिरियार नाम का एक छोटा सा गांव था और मुट्टिरियार नाम के वहां का जो एक छोटे से मुखिया का परिवार था, उनकी सत्ता थी ये चोल वंश की। तो पहले वो कांजीपुरम के जो पल्लव राजा थे उनके अंतर्गत आते थे। हमने लास्ट क्लास में जाना था कि मातहत कौन होते हैं। मातहत वो होते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध योद्धा होते हैं और जो कि राजा के लिए काम करते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ने क्या किया था, राजा के लिए काम छोड़कर बल्कि उनसे युद्ध करके उनका ही क्षेत्र जीत लिया था। तो ये उनमें से एक थे। उरईयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टिरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। मतलब उरईयार के जो चोल वंशीय प्राचीन मुखिया थे, चोल वंशीय एक जाति हुआ करती थी, उनके जो मुखिया थे उन्होंने क्या किया, विजयाला जो 9वीं सदी के मध्य में विजयाला नाम था उनका मुखिया का, 9th सेंचुरी के टाइम पर जो मिडिल मुट्टिरियार था वहां पर उन्होंने उन लोगों को हराया और उस डेल्टा पर कब्जा कर लिया, अपना राज जमा लिया। उसने वहां तंजावूर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। तो उन्होंने वहां पर क्या क्या परिवर्तन किए थे, सबसे पहला तो तंजावूर शहर बनवाया और एक मंदिर बनवाया। कौन सी देवी का, निशुंभ सूदनी देवी का वहां पर एक मंदिर बनवाया। हमने लास्ट क्लास में भी ये पढ़ा था कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपनी सत्ता का प्रमाण देने के लिए, ये बताने के लिए कि वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं, वो मंदिर वगैरह का निर्माण करवाते थे ताकि लोग जाने कि वो कितने पावरफुल हैं और कितना ज्यादा उनके पास धन दौलत है। विजयालय के उत्तराधिकारों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यान और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। तो विजयाला के जो उत्तराधिकारी थे, मतलब उनके बाद के जो वंशज थे, उन्होंने क्या किया कि उनके जो इलाके थे और जो पड़ोसी इलाके थे आजू बाजू के, वो सब भी जीत लिए थे, शक्ति और क्षेत्रफल दोनों ही रूप में। वहां पर मतलब उन्होंने वो एरिया पूरा कैप्चर कर लिया था, वहां का जितना भी राज्य आते थे, राजा महाराजा थे, सब उनके अधीन हो गए थे। तो दक्षिण और उत्तर के जो पांड्यन और पल्लव जो इलाके थे वो भी इन लोगों ने जीत लिए थे और अपना हिस्सा बना लिया था। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। मतलब राजराज प्रथम एक राजा का नाम था, तो वो सबसे पावरफुल रूलर माना जाता है चोल वंश का। क्यों माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल में ज्यादातर जो एरिया था उसको कैप्चर किया था। बाद में जो उनके उत्तराधिकारी आए थे उन्होंने इतना नहीं कर पाए थे। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया, मतलब उन्होंने पूरा अपना साम्राज्य जो था सही तरीके से दोबारा उसको एस्टैब्लिश किया था। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। तो राजराज का जो पुत्र था राजेंद्र प्रथम, उसने उसी पॉलिसीज पे काम किया जिस पॉलिसीज पे उसके पिताजी यानी कि राजा राज प्रथम करते थे। और फिर उसके बाद उसने क्या किया, गंगा घाटी, श्रीलंका और जितने भी दक्षिण पूर्वी एशिया देश थे उन सभी पर हमला किया। और ये जो उन्होंने अभियान चलाया था हमला करने का और जीतने का उन इलाकों को, उसके लिए उन्होंने एक जल सेना यानी कि नेवी की सेना भी बनाई थी। अब आ जाइए भव्य मंदिर और कायस्य मूर्तिकला पर। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। मतलब राजराज और उनके बेटे दोनों ने तंजावुर में काफी सारे बड़े मंदिर बनवाए थे, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर मूर्तिकला की गई है, जिससे उस मंदिर की जो शोभा है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आज भी अगर आप साउथ इंडिया साइड जाएंगे तो वहां के मंदिरों की जो बनावट होती है, जो उनके ऊपर के जो डोम बनता है पूरा, वो इतना सुंदर बनता है, इतना बारीक नक्काशी करके उसे बनाया जाता है कि हम नॉर्मल मंदिर को इतना सुंदर देख ही नहीं सकते। वहां पर छोटे से छोटे मंदिर में भी इतनी सुंदर चित्रकला और मूर्तिकला की जाती है। ये उनके ट्रेडिशन से ही चला आ रहा है पुराने टाइम से। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। मतलब ये जो चोल मंदिर था, इसके आसपास ना बस्तियां विकसित हो गई थी। अपने आसपास के एरिया जो विकसित हुए हैं उनके लिए काफी बड़ा केंद्र बन चुका था और यहाँ पर शिल्प उत्पादन के केंद्र बन चुके थे, क्योंकि मंदिर में भी शिल्प कला का इस्तेमाल किया जाता था, तो इसलिए वहां पर शिल्प उत्पादन के भी केंद्र बन गए थे। और ये जो मंदिर था, ये रूलर्स ने तो इसके लिए जगह दी ही थी, और भी लोग थे जिन्होंने यहाँ पर जो जमीन है वो दान में दी थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये मंदिर बहुत सुंदर और बड़ा बन गया, मतलब पूरी तरीके से संपन्न हो गया था। और यहाँ के जो भूमि थी उसका जो प्रोडक्शन होता था, खेती बाड़ी जो भी होता था, मतलब जो मंदिर से जो भी मिलता था दान वगैरह में पैसे और ये धन दौलत, तो ये सब उन लोगों पे खर्च होता था जो यहाँ पर काम करते थे, जैसे कि पुरोहित यानी कि पंडित, मालाकार, बावर्ची जो वहां पर प्रसाद बनाते थे, मेहतर, संगीतकार और नर्तक। मतलब वहां पर संगीतकार भी रहते थे जो डेली बेसिस पर जाके वहां पर गाना वाना भजन वजन गाया करते थे, और नर्तक भी थे। तो इन लोगों पर वो सारी चीजें खर्च होती थी जो वहां पर आता था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र तीन में एक दिया हुआ है मंदिर, और यहाँ लिखा है गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर। छत जिस तरह के क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई है उन्हें भी देखिए। मतलब कितना सुंदर इन लोगों ने बनाया है। ऊपर से जो छत है उसको एकदम पतला कर दिया है और बाहर इतना सुंदर ये दिखाने के लिए यहाँ पर पत्थर में इन लोगों ने मूर्ति की गढ़ाई की है। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मतलब अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो जो मंदिर थे वहां पर सिर्फ लोग पूजा वगैरह करने नहीं जाते थे, बल्कि वहां पर जो इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी हो गई थी, दान वगैरह जो लोगों के होते थे, मतलब मंदिर तभी तो लूटे जाते थे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि महमूद ऑफ गजनी ने कितने सारे मंदिर लूट लिए थे, तो उसने क्यों लूटे थे, क्योंकि मंदिर सबसे ज्यादा वहां पर पैसा वगैरह पाया जाता था। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कायस्य प्रतिमा बनाने का काम। चोल कायस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कायस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। मतलब जो कायस्य शिल्पकार, जो मूर्तिकला वहां की हुआ करती थी, वो सबसे फाइन आर्ट माना जाता था पूरी दुनिया में, कायस्क जो धातु होता है उसका। और ज्यादातर जो मूर्तियां बनती थी, जो स्टैचूज बनते थे, आइडल्स बनते थे, वो बनते थे देवी देवताओं की, क्योंकि ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है एक। तो बहुत सारे जो मूर्तियां बनती थी वो देवी देवताओं की बनती थी, लेकिन कुछ मूर्तियां ऐसी भी होती थी जो भक्तों की बनाई जाती थी, ताकि वो दिखा सकें कि भक्त कितने ज्यादा आते हैं उधर। अब आ जाइए कृषि और सिंचाई पर, कि वहां पर खेती वगैरह और इरिगेशन सिस्टम कैसा था। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 देखिए। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिनसे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया करता है। मतलब चोलों के पास जो इतनी ज्यादा उपलब्धियां आई थी कृषि के टाइम पर, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी, वो भी उनके लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट का काम करता है। मानचित्र 2 आप देख सकते हैं, उसमें देखिए कि कावेरी नदी जो बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले बहुत छोटी छोटी अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती है, और ये जो ब्रांचेस होती है ना, ये पानी वहाँ रिवर बैंक पर उलीचती है, जिससे उपजाऊ मिट्टी वहां पर जमा हो जाती है। तो ये जो ब्रांचेस का, जो रिवर ब्रांचेस का जो पानी होता है, वो खेती के लिए और इम्पोर्टेंटली सबसे ज्यादा चावल की खेती के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी के में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। मतलब ये ही एक हिस्सा नहीं था जहां पर खेती वगैरह शुरू हुई थी, जो तमिलनाडु के और भी क्षेत्र थे, जो हिस्से थे, वहां पर भी खेती पहले ही होने लगी थी, लेकिन 8वीं या 5वीं सदी में आकर ही ये जो इलाके हैं इसमें लार्ज स्केल पर फार्मिंग प्रोडक्शन होने लगा था। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। अब देखिए, जो कुछ इलाके थे वहां पर जंगल को साफ किया जा रहा था ताकि वहां पर खेती की जा सके, फिर कुछ इलाके थे जिनको लेवल कर रहे थे ताकि खेती आराम से की जा सके, जो बाढ़ का पानी था उसको सही तरीके से यूज करने के लिए डैम्स बनाए जा रहे थे, और जो ये नहरों का निर्माण किया जा रहा था, जो डैम का पानी था वो इरिगेशन फैसिलिटी के लिए खेतों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा था। और वहां पर बहुत से इलाके ऐसे भी थे जहां पर एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। अब ये चित्र 4 देखिए आप यहाँ पर, एक चोल कांस्य प्रतिमा कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए। ऐसी प्रतिमाएं किस तरह बनाई जाती थी, यह जानने के लिए अध्याय 6 देखिए। तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कांस्य प्रतिमा का, जो उस टाइम पर बनाया जाती थी मूर्तियां, और कितनी माइन्यूटली इसका ये सब कुछ किया गया है, जो कारीगरी की गई है वो कितनी माइन्यूटली की गई है, और इसके बारे में आप ज्यादा अच्छे से 6th चैप्टर में जान पाएंगे, वहां पर इसका ज्यादा अच्छे से डिटेलिंग गिवन है। कई जगह पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना, और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। तो मतलब कई जगह पर फसलों के लिए जो सिंचाई का एक पूरा प्रॉपर सिस्टम बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि जो चावल की फसल होती है उसमें थोड़ा बहुत पानी से काम नहीं चलता, घुटने घुटने तक पानी खेतों में भरा रहना चाहिए। तो उसके लिए कुछ पॉलिसीज अपनाई गई थी उस टाइम पर। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए थे ताकि पानी इकट्ठा हो सके उसमें। कुछ जगह पर बारिश का पानी स्टोर करने के लिए बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए थे ताकि तालाब के रूप में वो भर सके। फिर सिंचाई के काम के लिए क्या होता था, प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता था उस टाइम पर, जैसे कि लेबर और रिसोर्सेज का यूज किया जाता था प्लानिंग के लिए, और वहां पे कंस्ट्रक्शन इन सब चीजों के लिए, जो कि इरिगेटिंग फैसिलिटीज होती थी, और बहुत सी चीजें होती थी, जैसे यहाँ पर बंटवारा कैसे करना है पानी का कहाँ पर। और ज्यादातर जो नए शासक थे वो गांव में रहने वाली जो गतिविधियां थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र 5 जो दिया हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं हम जरा। नवी शताब्दी तमिलनाडु का एक जल द्वार हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी में खेत सींचे जाते थे। जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी का या धातु बाधा
है जो आम तौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रभाव को संचलित करता था। मतलब ये एक टाइम का ना रोधक लगाया गया था वहां पर। चलिए अब आ जाइए साम्राज्य का प्रशासन। प्रशासन किस प्रकार संगठित था, मतलब वहां का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होता था वो हम जानेंगे। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। मतलब जहाँ किसान रहते थे उन बस्तियों को उर बोला जाता था, तो इतने अच्छे से इरिगेशन फैसिलिटीज के साथ वो काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट हो चुके थे। इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। तो इस टाइप के ये जो इतने सर्वधर्म संपन्न जो गांव होते थे उनको बोला जाता था नाडू। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। जो ग्राम परिषद होता था नाडू का, तो वो क्या करते थे, जो अलग अलग वहां पर जो डिस्प्यूट्स रेज हो जाते थे उसके लिए वहां पर वो न्याय करते थे, मतलब कोर्ट की तरह वो बिहेव करते थे, और टैक्स वसूल करने का भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करते थे। वेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज का अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। मतलब वेलाल जाति जो थी उसमें जो धनी किसान थे उनके द्वारा उनको अपॉइंट किया गया था कि नाडू का जो भी कामकाज है उसका अच्छा खासा कंट्रोल इन्हीं लोगों के हाथों में था। और उनके जो किसानों के केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में धनी किसान थे ना, उनके बारे में उनका लेखा जोखा सब कुछ यही लोग रखते थे। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन, तीन राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरैयार प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपा। तो उसमें से जो धनी भूस्वामी थे, मतलब कि जो राजा का ये सारे काम करते थे, जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड थी और काफी पावर थी अपने एरिया में, तो उनको अलग अलग उपाधि दे दी गई थी। उनको सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन बोला जाता था, जिसका मतलब होता था तीन राजाओं को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला किसान या वेलन। और दूसरा इनको बोला गया अरैयार, मतलब प्रधान, प्रेसिडेंट किसी जगह का, उस चीज का प्रेसिडेंट बोला जाता था। तो ऐसे उनको टाइटल दिए गए थे और उनको बहुत ज्यादा जो जितने भी इम्पोर्टेंट जितने भी पद हुआ करते थे, पोजिशन हुआ करती थी उस टाइम पर, वो दी जाती थी ताकि ये लोग काम अच्छे से करें। अगले पेज पर इस बॉक्स पर आ जाइए, भूमि के प्रकार। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, मतलब अलग अलग टाइप की लैंडफॉर्म्स वहां पर मिलती हैं। वेलन वगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, मतलब वेलन वगाई उस लैंड को बोला जाता था जिस जो ब्राह्मण की नहीं होती थी, किसी और की होती थी। ब्रह्मदेय, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। तो ब्रह्मदेय उन लैंडफॉर्म्स को बोलते थे, उन जगहों को बोलते थे जहां जो ब्राह्मणों को उपहार के रूप में या भेंट के रूप में या फिर दान के रूप में दी जाती थी। अगला है शाला भोग, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। मतलब शाला भोग वो भूमि हुआ करती थी, लैंडफॉर्म होता था जहां पर जो स्कूल्स वगैरह एस्टैब्लिश करने के लिए उसे दिया जाता था। देवदान तिरुनम टुक्कनी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। तो देवदान और तिरुनम टुक्कनी जो थे वो ऐसी जमीनें थी जिनमें सिर्फ मंदिर का निर्माण हो सकता था, तो उसके लिए वो दी जाती थी। अगला है पल्ली चंदम, जैसे संस्थानों को दान की गई भूमि। अच्छा, जैन संस्थानों को दान की गई भूमि, तो मतलब जो जैन धर्म से ताल्लुक रखते हैं उन लोगों को ये भूमि दी जाती थी उस टाइम पर, ताकि ये जैन धर्म भी एस्टैब्लिश अच्छे से हो पाए। तो यहाँ पर जो अलग अलग टाइप की लैंडफॉर्म्स थी जिस चीज के लिए उनको बताया गया है, सिर्फ उसी चीज के लिए वो यूज की जा सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कूल के लिए दी गई जमीन है तो आप उसको जैन संस्थान के लिए नहीं यूज कर सकते। अगर ब्राह्मणों को दी गई जो जमीन है उसको आप गैर ब्राह्मण जो किसानी स्वामी है वो लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते थे। तो एक पूरा सिस्टमैटिकल इनका एडमिनिस्ट्रेशन था। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ, परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। अब हमने इस चैप्टर में देखा कि बहुत बार जो ब्राह्मणों को है टाइम पर उन लोगों को लैंड जो थी वो दान में दी जाती थी, क्योंकि ये बहुत पुण्य का कार्य माना जाता था। जितने भी वहां पे राजा महाराजा थे वो बहुत पुण्य समझते थे ब्राह्मणों को भूमि दान करने में, मतलब भूमि दान सबसे बड़ा दान होता है। मतलब इससे ये समझा जाता है कि कोई अगर भूमि दान कर रहा है तो वो बहुत ज्यादा पराक्रमी है, और इतना ज्यादा जो दान दिया गया था ब्राह्मणों को, तो उसकी वजह से जो कावेरी घाटी है और दक्षिण भारत का जो दूसरे हिस्से हैं उनमें बहुत सारी ब्राह्मण बस्तियां बन गई थी जहां पर सिर्फ ब्राह्मण ही रहते थे। प्रत्येक ब्रह्मदेह के देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्योरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। मतलब जितनी भी ब्राह्मदेह की देखरेख होती थी, जो ऐसी भूमि होती थी जो ब्राह्मणों को दान में दी गई है, उसको ही जो देखरेख है वो ब्राह्मण के भूस्वामी द्वारा एक जो जाती थी, ब्राह्मण एक सभा थी उनके द्वारा की जाती थी। मतलब इन लोगों ने कमेटी बना ली थी, तो ये जो कमिटीज थी अपना काम बहुत ही इफेक्टिवली करती थी, और इनके जो भी डिसीजंस होते थे वो सब शिलालेखों में और मंदिरों के जो पत्थर की दीवारें होती थी उसमें मेंशन्ड होती थी। कई जगह पर नागरम नाम से जो ज्ञात व्यापारी थे उनका भी एक कमिटी होता था, और शहरों में प्रशासनिक कार्य यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो जॉब होते थे ये ट्रेडर्स भी किया करते थे। तमिलनाडु में चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों से इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। मतलब तमिलनाडु में ये जो जिला है वहां के जो अभिलेख हैं उनसे हमें पता चलता है इंस्क्रिप्शंस के द्वारा कि वहां पर कैसे उन लोगों ने अपनी कमिटीज बनाई थी। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे हर काम के लिए, ताकि हर एक काम बहुत ही इफेक्टिवली हो। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तो मतलब ये लोग कैसे करते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते थे, लेकिन डिपार्टमेंट ऐसा नहीं कि किसी को भी कोई भी डिपार्टमेंट पकड़ा दिया। उसका जो चयन है, जो चॉइस है, ये लोग जो चूज करते थे वो कैसे करते थे कि जो लोग कैपेबल हैं, जो इस काम को करने के लिए सही माने जाते थे, जिनके पास कैलिबर है, उनका नाम लिख दिया जाता था एक तालपत्रों में, और एक मिट्टी का जो मटका होता था उसमें उसको डाल देते थे, और फिर एक छोटे बच्चे से बोलते थे कि एक के बाद एक नाम निकाला जाए, पर्ची निकाली जाए जिसमें नाम लिखा हो, और फिर डिसाइड करते थे किसको कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को मंदिर की देखरेख का काम दिया जाना है तो सबसे पहला पॉइंट अगर बोला गया कि मंदिर की देखरेख किसको मिलेगी, तो उसके लिए वो लोग पहले पर्ची निकालेंगे, जिसका नाम आएगा तो उसको मंदिर की देखरेख का काम मिल जाएगा। अगले पेज पर आ जाइए, ये बॉक्स पर अभिलेख और लिखित सामग्री। तो उस टाइम के अभिलेख और लिखित सामग्री किस तरीके से हुआ करती थी वो हम जानते हैं। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। मतलब आपको उस कमेटी का मेंबर बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं वो फुलफिल करनी पड़ेगी। सबसे पहली कंडीशन थी कि अगर आपको मेंबरशिप लेनी है तो आपको एक ऐसी जमीन का भू स्वामी होना चाहिए जहां से टैक्स लिया जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए जिसको भी मेंबर बनना है। थर्ड, उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मतलब एज बार था उसमें कि 35 से नीचे वाले जो हैं वो इसमें मेंबर नहीं बन सकते हैं। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, जो लोग इस कमेटी के मेंबर बनेंगे उनको वेदों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। मतलब अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसी कमेटी को ज्वाइन कर रहे हो तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन जो काम होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हो, और अगर आप ईमानदार होंगे तो बहुत अच्छा है, ताकि जो काम है वो सही तरीके से हो। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। अब इसमें यह भी कंडीशन थी कि अगर आप पिछले 3 साल किसी भी कमेटी के आप मेंबर रह चुके हो तो आप इस कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते, या किसी भी और कमेटी के मेंबर आप नहीं बन सकते। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। मतलब जिन्होंने ये सारे खाते जमा नहीं कराए, कुछ पैसे वगैरह हुआ करते थे, अगर वो नहीं जमा कराए हैं तो आप इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम के एक उदाहरण। अभिलेखों में ये सब जानना तो बहुत ही इजी होता है कि राजा महाराजा का क्या काम हुआ करता था, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट होते थे, उनके कार्यकाल के और हर काम के बारे में लिखा रहता है। लेकिन जो लोकल पीपल होते हैं, जो प्रजा होती है, उनके बारे में कुछ भी नहीं पता रहता है हमें। तो 12th सेंचुरी में एक परियार पुणम नाम का एक कृति थी, तमिल कृति, उसमें इन लोगों के बारे में बताया गया है। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अंटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेलाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशे में लगे खेतीहर मजदूर रहते थे। मतलब ये सरहदों के बारे में बता रहे हैं कि वो उडनूर के सरहदों पर कुछ पुराने घर में छोटी छोटी झोपड़ियों में लोग रहते थे, और इनको जो वेलाल होते थे और जो ब्राह्मण होते थे उनसे अलग माना जाता था। मतलब इनको शूद्र जात माना जाता था। तो इनकी एक छोटी सी बस्ती थी और ये कुछ ऐसे किस्म के काम करते थे जो कि उस टाइम पर पवित्र नहीं माने जाते थे, और ये खेतीहर मजदूर भी थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के अहाते में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंड में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते रहते थे। तो मतलब इनकी जो कंडीशन थी काफी ज्यादा अलग थी बाकी गांव वालों से। इनकी झोपड़ियां भी इतनी अच्छी नहीं होती थी, चमड़े की पट्टियों से उसको आजू बाजू किसी तरह जोड़ तंगोड़ के बनाते थे। इनकी जो आंगन होते थे वहां पर मुर्गे मुर्गियां घूमते रहते थे। छोटे छोटे बच्चे थे जिनका जो कलर था, स्किन कलर था, वो काफी कॉम्प्लेक्स डार्क था, और वो छोटे छोटे से पिल्लू को लेकर या पिल्ले को लेकर घूमते रहते थे, उछलते खेलते रहते थे। मारुदु पेड़ों की छाया में एक मजदूरी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े गड़े हुए थे, और नारियल के पेड़ के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिर वाली कुत्तियां पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। तो वहां पर एक जो मजदूर थी उसने अपने बेटे को दूध पिलाने के बाद एक पेड़ की छांव में नीचे लिटा दिया था चमड़े के चादर पे, और वहां पर आम के भी पेड़ थे और जिसमें नगाड़े टंगे रहते थे, नारियल के पेड़ थे तो उसके नीचे एक छोटा सा गड्ढा था जहां पर एक फीमेल डॉग ने अपने बच्चों को दूध वगैरह पिलाने के बाद वो वहां पर लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पौ फटने से पहले तगड़े पुलियार, पुलिया या बहुवचन दोनों के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांग दे दी। दांत कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज रोज कांची वृक्ष की छाया में फैलती थी। मतलब ये लोग वहां पर ऐसे गाना गाया करते थे और इन लोगों का ये एंटरटेनमेंट का एक तरीका था। नाउ कम टू दिस ब्लू बॉक्स, क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थीं? क्या आप समझते हैं कि समितियों के सदस्य के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी था? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यह है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सेदारी नहीं करती थी क्योंकि उनको इतना प्रिविलेज नहीं दिया जाता था, और ये जो लॉटरी का तरीका था ये काफी अच्छा था क्योंकि इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होगा कोई भी। अब सेकेंड ब्लू बॉक्स पे आइए, क्या इस पुरवे में कुछ ब्राह्मण थे? जितनी तरह की गतिविधियां चल रही थी उनका वर्णन करें। आपके ख्याल से अभिलेखों में इन सब का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है? इस पुरवे में कोई भी ब्राह्मण नहीं था क्योंकि ये वो जाति थी जिनको शूद्र या नीची जाति का माना जाता था। इनको गाँव में भी नहीं रहने दिया जाता था, गाँव के बाहर इनको रहने की अनुमति थी, और इसमें बहुत सारी गतिविधियां होती थी, यह आपका कार्य है बताना। तीसरा जो क्वेश्चन है इसके बारे में अभिलेख में इसलिए नहीं दिया हुआ था क्योंकि जो उस टाइम के लोग थे वो ये सोचते थे कि इन लोगों के बारे में कौन जानना चाहेगा, लोग तो सिर्फ जो इतिहास जानना चाहेंगे वो राजा महाराजाओं के बारे में जानना चाहेंगे, इसलिए इन लोगों के बारे में अभिलेख में कुछ भी नहीं लिखा होता था। अगले पेज पर आ जाइए इस नीले बॉक्स पर। तांग वंश के युग का चीन। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी जहां तुर्की, ईरान, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। मतलब चाइना में जो तांग राजवंश था इन्होंने अपना जो ये साम्राज्य स्थापित किया था ये 100 वर्षों तक चला था, 300 वर्षों तक, सोचिए कितना लंबा टाइम था। और यहाँ का जो कैपिटल सिटी था जिसको शियान बोलते हैं वो बहुत बड़े महानगरों में से एक था पूरे दुनिया के। तो यहाँ पर टर्किश, ईरानी, भारतीय, जापानी, कोरियाई सब ट्रेडर्स का आना जाना लगा रहता था। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं में यह व्यवस्था किन मायनों में भिन्न थी? देखिए, वहां पर क्या होता था कि अगर आपको किसी भी चीज की नौकरी चाहिए तो आपको एग्जाम देना पड़ता था। जैसे कि आज के हमारे सिस्टम में होते हैं ना, गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, आपको अगर कोई भी नौकरी चाहिए तो आपको एग्जाम देना होता है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, वैसे वहां पर चलता था। और 1911 तक ये काम चलता रहा। थोड़े बहुत माइन्यूट चेंजेस किए गए थे इसमें, बट ये सारे काम चलते रहे। अब हमारे यहाँ क्या होता था, हमारे यहाँ तो सिर्फ उन लोगों को दे दिया जाता था ये सारा काम जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, जिनके पास पैसा जमीन बहुत हुआ करता था। चलिए अब आ जाइए, कल्पना कीजिए, पर आप एक सभा के चुनाव में मौजूद हैं, जो कुछ आप देख और सुन रहे हैं उसका वर्णन कीजिए। तो ये आपको करना, ये आपका काम है। अब आ जाइए फिर से याद करें, पर पहला प्रश्न है जोड़े बनाओ गुर्जर प्रतिहार। इसका आंसर होगा पश्चिमी दक्कन। फिर दूसरा है राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट आता है गुजरात और राजस्थान में, पाल वंश आता है बंगाल में, और चोल आता है तमिलनाडु में। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीन पक्ष कौन कौन से थे? इसका आंसर है त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीन जो शासक थे वो थे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालवंश। थर्ड क्वेश्चन, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी? इसका आंसर आपको पेज नंबर 27 पर मिल जाएगा। ये जो येलो बॉक्स है इसमें जो सारी कंडीशन लिखी है ये आपका आंसर है। नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन, चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले दो प्रमुख नगर कौन से थे? इसका आंसर है चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले दो प्रमुख नगर दिल्ली और अजमेर थे। आइए समझें, फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाइए, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 17 पर, सेकंड पैराग्राफ जो है उसकी सेकंड लाइन में। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जनमान क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। नाउ कम टू सिक्स्थ क्वेश्चन, नए राजवंशों की स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया गया? इसका भी आपको आंसर मिलेगा पेज नंबर 17 पर, फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। कम टू सेवेंथ क्वेश्चन, तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 25 में सेकेंड लाइन से। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों का व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8, चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी? इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 24 पर, फर्स्ट लाइन में। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर में साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कायस्क प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कायस्क प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कायस्क प्रतिमाओं में गिनी जाती थी।
अब आ जाइए 9th क्वेश्चन पर। मानचित्र एक को दोबारा देखें और तलाश करें कि जिस प्रांत में आप रहते हैं उसमें कोई पुरानी राजशाहियां राजाओं के राज्य थी या नहीं। तो ये आपका काम है, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं आपको वहां पर देखना है कि कौन से राजा उस टाइम पर राज्य करते थे। कम टू 10th क्वेश्चन। जिस तरह के पंचायती चुनाव हम आज देखते हैं उनसे उत्तर मेरूर के चुनाव किस तरह अलग थे। वहां पर जो चुनाव किए जाते थे वो धन संपत्ति के आधार पर किए जाते थे और आज हमारे यहाँ कौशलता के आधार पर चुनाव किए जाते हैं। कम टू 11th क्वेश्चन। इस अध्याय में दिखलाए गए मंदिरों से अपने आसपास के किसी मौजूदा मंदिर की तुलना करें और जो समानताएं या अंतर आप देख पाते हैं उन्हें बताएं। तो आपको अपने आसपास के मंदिर देखने हैं, क्या सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज आपको दिखती हैं वो आपको बताना है। कम टू 12th क्वेश्चन। आज के समय में वसूले जाने वाले करों के बारे में और जानकारी हासिल करें। क्या ये नगद के रूप में है, वस्तु के रूप में है या श्रम सेवाओं के रूप में है। तो आज हमारे यहाँ जो टैक्स सिस्टम है दैट इज बेस्ड ऑन मनी, हमसे सिर्फ पैसा लिया जाता है, बाकी ये चीजें नहीं करवाई जाती। अब यहाँ साइड में बीज शब्द लिखे हैं, इनको देख लीजिए, सामंत, मंदिर, नाडू और सभा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, हमारी यहाँ पे क्लास खत्म होती है। प्लीज कीप रिवाइजिंग ऑल दैट थिंग आई हैव मेक यू स्टडी। बहुत अच्छे से सब कुछ रिवाइज करना ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।